हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। तीसरा अध्याय कर्म योग, जिसमें भगवान अब योग और यज्ञ, अर्थात कैसे हम अपने कर्मों को यज्ञ बना सकते हैं, ये कह सकते हैं कि यज्ञ रूपी कर्म या कर्म रूपी यज्ञ। तो पिछले हफ्ते हमने 10वें श्लोक में संक्षिप्त रूप में ये समझा, इफ वन वॉन्ट्स टू बी बोथ मटीरियली एंड स्पिरिचुअली हैप्पी देन वन शुड एंगेज इन परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। परंतु इसके पहले भगवान और हमारे वैष्णव आचार्य, उन्होंने ये क्लियर किया कि यज्ञ की परिभाषा क्या है। केवल हवन कर लेना ये हमें वो संतुष्टि नहीं देगा। परंतु इस युग में, पिछले हफ्ते हमने क्या सुना कि इस युग के लिए जो निर्धारित यज्ञ है, जैसे कि हरिनाम संकीर्तन, और उस हरिनाम संकीर्तन को अपने जीवन में ढालना या अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना कि हरिनाम संकीर्तन में हम शुद्ध तरीके से लग सकें, ये हम कलयुग निवासियों के लिए निर्धारित यज्ञ है या कर्म। तो अब भगवान आज के श्लोक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्थापित कर रहे हैं कि जिसमें भगवान ने ये जो सृष्टि का निर्माण किया, हालांकि हमने सुना है कि हम इच्छा किए कि हम स्वतंत्र रूप से अलग भगवान से होकर भोग करना चाहते हैं, तो जिसके वजह से भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया। परंतु भगवान केवल सृष्टि के रचयिता नहीं है, या मतलब एक्सटर्नली केवल उन्होंने कोई, जैसे कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर कुछ रचता है, केवल वैसे ही नहीं रचा इस सृष्टि को। जैसे कि कोई कृपालु पिता होता है, अपने पुत्रों के विषय में चिंता करता है, संतान के विषय में चिंता करता है, तो भगवान ने जो पूरी सृष्टि की रचना की, देवताओं को लेकर, हम मनुष्यों को लेकर, पशु, जितने सारे तत्व हैं, इन सब को लेकर, इसके पीछे भगवान की एक बहुत गूढ़ योजना थी। तो वो उसका एक विवरण आज के श्लोक में भगवान दे रहे हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वेरी होलिस्टिक वर्स। अब यहां पर भगवान केवल जो तात्कालिक स्थिति है युद्ध की, केवल उसी पर गौर नहीं कर रहे, अपितु अर्जुन की स्थिति और उस तात्कालिक स्थिति को लेकर भगवान ये सारे जो गूढ़ मुद्दे हैं ये बीच बीच में श्लोकों के द्वारा हमें बता रहे हैं कि मैं केवल यहां पर लड़ाई करने के लिए नहीं आता या लड़ाई करवाने के लिए नहीं आता, मेरा मुख्य प्रयोजन क्या है, वो भगवान बीच बीच में उसका ट्रेलर देते रहते हैं। ये एक श्लोक उसी के संदर्भ में है। तो अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो तीन मुख्य मुद्दे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शैल प्लीज द डेमीगॉड्स टू बिगिन विथ। प्लीज्ड डेमीगॉड्स शैल प्लीज ह्यूमंस इन रिटर्न। और तीसरा मुद्दा, दिस कोऑपरेशन अमंगस्ट द डेमीगॉड्स एंड ह्यूमंस शैल ब्रिंग यूनिवर्सल प्रॉस्पेरिटी। तो यहां पर एक श्लोक में देखिए, ये जो जितनी समिट्स होती है, यूएनपी समिट और कैसे हम इकोलॉजी और ये पूरे यूनिवर्स को हम बहुत खुशहाल बनाए, यहां पर भगवान एक श्लोक में इन तीन मुद्दों के द्वारा बता रहे हैं। तो भगवद गीता में सारी समस्याओं का हल है, फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोशल टू नेशनल टू इंटरनेशनल टू कॉस्मिक टू यूनिवर्सल। तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवद गीता है जो आजकल इंडिया में ज्यादातर स्कूलों में भी ये बताया जाता है, भगवद गीता रामायण महाभारत दे आर माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स। दिस इज एन इंसल्ट, दिस वर्ड माइथोलॉजिकल विच मीन्स इट्स ऑल मिथ। मिथ का अर्थ क्या है कि मनगढ़ंत किसी ने कुछ लिख दिया बोल दिया, नहीं, दीज आर ऑल हिस्टोरिकल, इसलिए इनको इतिहास कहा गया। दीज आर ऑल हिस्टोरिकल। हिस्ट्री का अर्थ क्या है, जो सत्य घटनाएं हैं वो मिथ नहीं है। तो बाकी चीजों के विषय में तो हम बोलते हैं कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, और जब भगवद गीता रामायण की बात आती तो माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर, कि जैसे ये सब कुछ हुआ ही नहीं, बस कुछ लोग बैठकर थोड़ा लोगों का मन बहलाने के लिए उन्होंने कुछ फिक्शन लिखा, नहीं। तो यहां पर जब इस पर हम अमल करेंगे तो हम अभी जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से हम सुधरेंगे। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये केवल कुछ मिथ्या या मिथ है, दीज आर ऑल प्रूवन फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ओनली थिंग इज वी हैव टू अप्लाई इन आवर लाइफ। तो ये तीन मुद्दे, तो हम सबसे पहली लाइन आज के श्लोक की लेंगे, देवान भावयतानेन। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं तुम इन यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि देवताओं को क्यों प्रसन्न करना है, व्हाई डू वी हैव टू अपीज दीज डेमीगॉड्स, जब यज्ञ करने का जो फल है, अंततः फल वो ये है कि भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है हमें। हरे कृष्ण, साइलेंट। सो व्हाई डू वी नीड टू अपीज द डेमीगॉड्स, क्या जरूरत है, क्या कहोगे आप? आज भगवान ने ये कहा है, भगवान का एक ये आदेश है, देवान भावयताने। तो ये प्रश्न यदि हम पूछें, वाय, क्यों क्यों देवताओं को प्रसन्न करना, वाई नॉट जस्ट डायरेक्टली यू नो प्लीज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. दे आर ऑथोराइज्ड पीपल. हाँ, एक दृष्टिकोण से सही है. सबसे पहले हमको ये देखना है कि उनको प्रसन्न करने और भगवान को प्रसन्न करने में अंतर है. दोनों में अंतर है. जैसे कि हम टैक्स भरते हैं, तो जब हम टैक्स भरते हैं तो हम प्रसन्न किसको कर रहे हैं? गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम प्रसन्न कर रहे हैं टैक्स भरकर. लेकिन पैसा वही है, घर लाकर जब हम परिवार वालों को पैसा देते हैं तो वो भी प्रसन्न होते हैं कि नहीं? दोनों में क्या अंतर है? पैसा वही है, करेंसी वही है, डिनोमिनेशन वही है, उसमें से आपने कुछ गवर्नमेंट को दिया और कुछ घर पर लाकर परिवार वालों को दिया. दोनों प्रसन्न हुए, परंतु दोनों की प्रसन्नता में अंतर क्यों है? क्योंकि आपने जो पैसे दिए दोनों पार्टियों को, उसमें आपको उनको देने का उद्देश्य अलग था. तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए जब भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि देवताओं को प्रसन्न करो. मतलब ये नहीं कि सारे पैसे निकाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो प्रसन्न होने चाहिए, या सारे पैसे निकाल के घर वालों को दे दो. अरे ये तो मेन है, इन्हीं के लिए तो मैं सब इतनी जद्दोजहद कर रहा हूं. तो जैसे यहां पर है, गिविंग डेमिगॉड्स देयर ड्यू ऑनर एंड रिस्पेक्ट. तो उनको उनका आदर सत्कार देना. क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से है. Therefore, they deserve due honor and respect because they are duly connected to the Supreme Personality of God. That is the only sole reason. And for that matter, anyone or anything connected to the Supreme Personality of Godhead should be given the due honor and respect. So, अब यहाँ पर honor and respect की जब बात आती है, जैसे हम हमारे सिक्स सेशन गीता कोर्स में जब ये सेशन लेते हैं कृष्णा एंड डमी गॉड्स, तो भारत में विशेष रूप से लोगों के अंदर वो ज्ञान नहीं है कि ये देवता और भगवान कृष्ण में अंतर क्या है. तो हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक पुलिस कांस्टेबल है और पुलिस कमिश्नर, दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं, दोनों वर्दी पहनते हैं, और आपको दोनों को सम्मान करना है. तो यदि पुलिस कांस्टेबल को आप देखते हो और पुलिस कांस्टेबल को देखकर आप कहते हो पुलिस कमिश्नर साहब सलाम मेरा, और पुलिस कमिश्नर को देखकर कहते हो हवलदार साहब कैसे, तो आपने रिस्पेक्ट किया परंतु एप्रोप्रिएटली नहीं किया. तो जब हवलदार को कोई पुलिस कमिश्नर कहता है तो हवलदार की इंसल्ट होती है कि नहीं? ये एक प्रकार का व्यंग है जब हवलदार को पुलिस कमिश्नर कोई कहता है. इट्स अ सार्कैज़म. जैसे कई बार हम किसी को टॉन्ट मारते हुए बोलते ना, आ गए महाराजा पटियाला, बोलते महाराजा पटियाला. अभी वो बेचारा कहीं किसी कंपनी में क्लर्क होगा, महाराजा पटियाला हमने बना दिया. तो वैसे ही जब देवताओं को हम भगवान श्री कृष्ण का दर्जा देते हैं तो देवता अप्रसन्न होते हैं उससे. और विपरीत फिर जब हम भगवान को भी इस प्रकार से कि हाँ वो भी सभी देवताओं के लिस्ट में या ऑल्टर में वो भी एक ही साथ सबको अगरबत्ती हम ऑफर कर देते हैं क्योंकि पता नहीं किसका क्या पोजीशन है, तो सब एक साथ सबको घुमा दो अगरबत्ती, तो सब अपना अपना शेयर ले लेंगे जिनको जितना चाहिए। हाँ कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आजकल लोग, तो ऑल्टर में पूरा सुपरमार्केट रहता है तो पूरा घुमा देते हैं, चलो अपना अगरबत्ती घुमा रहे हैं अपना धुआं ले लेना जितनी चाहिए आपको, झगड़ा मत करना। तो गिविंग ड्यू ऑनर एंड रिस्पेक्ट, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज देयर ड्यू ऑनरेबल पोस्ट एंड रिस्पेक्टेबल पोस्ट, तब तो हम दे पाएंगे। तो अब जैसे कि हमारे प्रभु जी ने कहा 33 करोड़ डेमीगॉड्स दे आर ऑथोराइज्ड बाय कृष्ण, तो यहां पर ये हमने पहले भी एक बार स्लाइड्स दिखाई थी कि कैसे देवतागण अलग अलग डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट हेड हैं, एचओडी हैं, और हम हमारे जीवन यापन के लिए ये सब डिपार्टमेंट्स पर आधारित हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज डिपार्टमेंट्स हेडेड बाय दीज डेमीगॉड्स। तो ये भगवान श्री कृष्ण की गवर्नमेंट के वेरियस कैबिनेट मिनिस्टर्स ये 33 करोड़ डेमीगॉड्स हैं। तो रेन डिपार्टमेंट कौन है? इंद्रदेव, जो शायद ज्यादा खुश नहीं है आजकल। फिर लाइट डिपार्टमेंट सूर्यदेव, वाटर डिपार्टमेंट वरुण देव, मतलब ये रेन और वाटर डिपार्टमेंट अलग अलग है, ये समझना चाहिए आपको। जैसे म्युनिसिपैलिटी और इरिगेशन डिपार्टमेंट अलग अलग होता है ना। अब देखो हम लोग ने ये सब यूनिवर्सल मिनिस्ट्री से कॉपी किया है सब, तो एक स्टेट लेवल पे होता है ना, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, फिर इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, वैसे यहाँ पे ये कॉस्मिक लेवल की गवर्नमेंट है, मतलब बहुत बड़े बड़े ये लोग पोस्ट संभाल रहे हैं। तो वरुण देव वाटर डिपार्टमेंट, हीट एंड फायर डिपार्टमेंट अग्निदेव, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दोनों को मनुष्यों को प्रसन्न रखना पड़ता है, हालांकि दोनों ऑपोजिट डिपार्टमेंट में, वाटर डिपार्टमेंट और हीट एंड फायर डिपार्टमेंट, लेकिन दोनों वो कनेक्टेड हैं। वेजिटेशन चंद्रदेव, एयर डिपार्टमेंट वायुदेव, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सरस्वती। अच्छा यहाँ पे ध्यान में रखना कि भगवान ने देखिए थ्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स वो स्त्रियों को दिया है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता वुमेन्स लिबरेशन वाले फ्रंट। तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट सरस्वती, सेकंड इम्पॉर्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, लक्ष्मी देवी को दिया है। डिफेंस डिपार्टमेंट दुर्गा देवी, तो किसी भी कंट्री में ये तीन बहुत मुख्य डिपार्टमेंट होते हैं, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, फाइनेंस एंड डिफेंस। ट्रेजरर ये खाली अकाउंटेंट है कुबेर जी, कमांडर इन चीफ कार्तिकेय, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये उनका, कोई साधारण कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है कि खाली कोई आधा एकड़ प्लॉट में कुछ बिल्डिंग बनानी है, यहाँ पे बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन ब्रह्मा जी लगे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक और ये प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, ये हमारे कर्मों के अनुसार कि कौन से डेस्टिनेशन पे इनको प्लेस करना है, नरक में स्वर्ग में कहाँ पर, इस पृथ्वी पर कौन से अलग अलग पशु योनि में वृक्ष की योनि में, ये सब के डिपार्टमेंट के मेन यमराज जी, इनसे सबको हमको वाकिफ रहना चाहिए। तो ये जब हम देख रहे हैं कि अब हमने तो खाली कुछ मुख्य डिपार्टमेंट्स लिए हैं, तो आप पूछोगे कि ये 33 करोड़ 33 करोड़ देवताओं की आवश्यकता है, इतने डिपार्टमेंट होते हैं क्या? हाँ, जैसे हमारे पलक झपकना, सांस लेना, देखना, खाना, सुनना, सूंघना, सब कुछ, ये सब के एक अधिष्ठात्रा देव हैं। और फिर उपदेव, इनके भी असिस्टेंट, वो अलग हैं, वो 33 करोड़ के लिस्ट में नहीं है, वो अलग हैं। तो देखिए भगवान का मैनेजमेंट कितना प्रिसाइस, कि छोटी सी छोटी चीजों के ऊपर भी भगवान ने किसी देवता को नियुक्त किया हुआ है। तो इसलिए देवता, वो जो ये उसके जो देव होते हैं अधिष्ठाता देव, जब उसको कोई अप्रसन्न कर देता है, अब जैसे हमारा शरीर, हम लेंगे हमारे शरीर में अगर कोई कहीं पे प्रॉब्लम हो गई, तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी कर्म, किसी हमारे जन्म में हमने किसी उस एचओडी को अप्रसन्न किया था, जिसके वजह से अभी हमको वो तकलीफ हो रही। तो इसलिए ये सब जो शास्त्रों में बताया गया है, आज जो भगवान कह रहे हैं कि उनको इन यज्ञों के द्वारा प्रसन्न करना। तो अब भगवान तो इन सब के ऊपर, देवादिदेव जिसे कहते हैं, इन सब के भगवान ऊपर और इनके अधीन ये सभी कार्यरत हैं। तो ये समझना आवश्यक है कि इनका कनेक्शन, जैसे हमने कहा ना, ड्यू ऑनर एंड रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट बट वी लव अवर फैमिली। ओके, सो यस, वी कैन रिस्पेक्ट एंड ऑनर द डेमिगॉड्स, बट सरेंडर हैज टू बी डन अनटू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग और सरेंडरिंग में बहुत अंतर है। तो इसलिए अब जनरली ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है, पता नहीं आजकल इंडिया में, हाँ एयरपोर्ट्स में तो है, वेंडिंग मशीन जिसे बोलते हैं। तो डेमिगॉड वर्शिप का कंपैरिजन वेंडिंग मशीन से, वेंडिंग मशीन क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अलग अलग खाने के पदार्थ, जो भी कोई वेफर, चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, ये सब डिस्प्ले में रहते हैं। तो वेंडिंग मशीन में आप देख रहे हो कि हाँ ये मेरे को आज क्या, मेरे को वेफर्स खाना है, वो खाने की इच्छा हो रही है। तो अब वो सब लॉक रहता है, वो साइड में वहां पे आपको पैसे डालने पड़ते हैं और उसका नंबर लिखा होता है। मान लीजिए कि वो वेफर्स का नंबर 10 पर है वो, तो आप पैसे डालो, वो टाइप करो नंबर 10, उसका जो प्राइस है वो भी लिखा रहता है। तो उतने पैसे आप डालोगे, वो टाइप करोगे, वो नीचे वहां से धन करके नीचे बाहर आता है। तो अभी डेमिगॉड वर्शिप की तुलना ये वेंडिंग मशीन से कैसे की गई है, कि हमारे पूरे वैदिक वांग्मय में ये अलग अलग ऑप्शंस दिए गए कि हाँ किसी को अगर बहुत सुंदर दिखना है तो हाँ चलो अश्विनी कुमार, वो एक प्रकार के डेमिगॉड है, उनकी पूजा करने की। किसी को बहुत शक्तिशाली स्वस्थ बनना है, किसी को बहुत पैसा कमाना है, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, किसी को अच्छा पति चाहिए, तो ये सब के लिए ये सब डिस्प्ले पे है और इन सब का नंबर है और उसके नीचे प्राइस लगा। प्राइस मतलब क्या, कि इनको प्रसन्न करने के लिए कौन सा होम, कौन सा यज्ञ, कौन सा तीर्थ, कौन सा उपवास, कौन सा व्रत, सब उसके नीचे लिखा गया। तो आपको वो जो पसंद है फिर उसमें देखो, वो टाइप करो नंबर और वो उपवास करो, वो व्रत करो, पैसे अंदर डालो, यहां से बाहर आए। तो इसलिए आप देखो कई बार लोगों के व्रत चलते, श्रावण चालू हुआ कि नहीं, होने वाला है ना, हाँ तो अलग अलग होते हैं, सोमवार का चल रहा है, फिर मंगलवार का चल रहा है, और ये सब जितने भी, ये सोमवार का अलग होता है शिव जी के लिए, मंगलवार का अलग होता है, बुधवार का अलग होता है, बुधवार का लोग बोलते हैं चलो इस्कॉन में चलते हैं। तो ऐसे हर एक वार के अलग-अलग जो देव हैं उनके लिए, और फिर जो त्योहार होते हैं, और बीच में कितने सारे व्रत, ये वो नवरात्र, श्रावण, अलग-अलग व्रत, तो उनके सब के पीछे उद्देश्य है कि हाँ उस देवता के द्वारा या उस देवी के द्वारा मुझे जो प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए जनरली लोगों के मन में आजकल ये धारणा है कि डेमिगॉड वर्शिप इज लाइक वेंडिंग मशीन, विच इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू टूडेज वर्स। आप लोगों को लग रहा होगा कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ये बकवास एग्जाम्पल है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं ये आपको कि यदि कोई देवताओं की पूजा भी करता है, लेकिन अगर वो समझ रहा है कि मैं देवताओं की पूजा ऐसे कर रहा हूं जैसे कि मशीन से मैं कुछ खाने के पदार्थ निकाल रहा हूं, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम अगर एग्जाम्पल लें हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या व्रत किया, और ऐसी तपस्या और ऐसा व्रत, लेकिन ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर नहीं आए। इसलिए भगवान ने पहली लाइन में क्या कहा है कि यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो। हिरण्यकशिपु ने जबरदस्ती, मतलब हिरण्यकशिपु ऐसा था कि वेंडिंग मशीन से अगर मुझे कुछ मिल नहीं रहा तो तोड़ के लूंगा मैं उसमें से, कई होते ना उसको कांच उसका तोड़ के निकालूंगा मैं। सो ही फोर्स्ड ब्रह्मा जी टू कम। ब्रह्मा जी को सभी गए, जाओ आपको पुकार रहा है, आपकी वो सब सेवा पूजा कर रहा है। तो ब्रह्मा जी को दिल पर पत्थर रखकर अपने मन को मारते हुए उधर जाना पड़ा। इसलिए अंततः हुआ क्या, हिरण्यकशिपु का वध हो गया, बिकॉज ही फोर्स्ड डेमिगॉड वर्शिप, ही वॉज नॉट प्लीजिंग द डेमिगॉड्स। इसलिए अगली लाइन आज के श्लोक की भगवान क्या कह रहे हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु। भगवान कह रहे हैं व्हाट इज द राइट वे टू वर्शिप दीज डेमी गॉड्स, कि इसके अंदर भगवान ने जो भावयन्तु की भावना के द्वारा, जैसे कि वेंडिंग मशीन का जो एग्जाम्पल था उसके अंदर कोई भावना नहीं है, उसके अंदर क्या है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैंने पैसा दिया है ना, मशीन निकालो, है ना। तो उसके अंदर भावना क्या है, भावना तो है ही नहीं, इट इज जस्ट अ मैकेनिकल रेसिप्रोकेशन। तो जब हम देवताओं को भी आदर सत्कार देते हैं लेकिन इस धारणा से कि मैं इतना करूंगा, इतना मैं आपको दूध ऑफर करूंगा, वो भी मेरे दूध वाला पानी मिलाया हुआ, आप मुझे रबड़ी दो, तो ये गलत। इसलिए ते देवा भावयंतु के कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, राइट वे टू वर्शिप द डेमिगॉड्स। सबसे पहला उदाहरण है ब्रजवासियों द्वारा इंद्र पूजा। अब हर वर्ष नंद महाराज और सारे ब्रजवासी गण इंद्र की पूजा किया करते थे, इंद्र याग, परंतु भावयंतु उनके अंदर भावना क्या थी कि इंद्र जो कि वर्षा के देवता हैं और हम वैश्य हैं, तो कृषि गोरक्षा ये हमारा स्वधर्म है वैश्यों का, तो गायों के लिए, हमारे कृषि के लिए हमें वर्षा की आवश्यकता है। तो ये इंद्र की पूजा क्यों किया करते थे, कोई पूछा, अरे इनके तो पुत्र ही भगवान कृष्ण थे, तो जिनके घर पे पूरा पावर हाउस है उनको क्या ये इंद्र की पूजा करने की जरूरत है। लेकिन वो इंद्र की आराधना, या हम कह सकते हैं कि उनका सत्कार, उनका यज्ञ क्यों किया करते थे, ताकि वो भगवान को ऑनर कर रहे थे इसके द्वारा, कि भगवान ने उनको नियुक्त किया है तो हम उनको भी भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो वो जो भी गौओं की रक्षा होती, अब जैसे वर्षा होती तो वर्षा से जो भी अन्न उगता और गौओं के लिए घास उगता, तो अन्न और दूध अल्टीमेटली ऑफर किसको होता था? मदन गोपाल, नंद गोपाल, उनको ऑफर होता था। तो यहां ब्रजवासी गण वो जब इंद्र की पूजा भी कर रहे थे, उनका यज्ञ भी कर रहे थे, जो कि एक दृष्टिकोण से शुद्ध भक्ति के शास्त्रों में नहीं वर्णित, परंतु भावना क्या थी जो आज भगवान बोल रहे हैं, उनको प्रसन्न कर कर अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट है वो भगवत प्रसन्नता, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। फिर दूसरा उदाहरण गोपियों द्वारा कात्यायनी व्रत। कात्यायनी दुर्गा देवी का एक रूप, तो दुर्गा देवी का वो व्रत किया करती थी, कार्तिक के महीने के पश्चात उनका व्रत शुरू होता है और बहुत ही वो कड़ा व्रत करती थी ये गोपियां। और ये कात्यायनी व्रत के पीछे उद्देश्य क्या था कि भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में मिले। तो फिर से इस उदाहरण में भी हम क्या देखेंगे कि देवताओं की पूजा हो रही थी परंतु भावयंतु। और शास्त्रों में उदाहरण है चंडीदास, जिन्होंने आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत से सुंदर कविताएं लिखी, भजन लिखे। तो इनकी कथा ऐसी है कि ये माता चंडी के भक्त थे और इनके जो भाई वो भगवान विष्णु के भक्त। तो ये चंडीदास इतने वो प्रख्यात थे और इतने ऐश्वर्यशाली, क्योंकि माता चंडी की पूजा किया करते थे तो इतना ऐश्वर्य, इतना पैसा, धन दौलत, इतना सब कुछ था। लेकिन इनके जो भाई जो कि शालिग्राम भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, वो एकदम गरीब निर्धन थे। इसलिए चंडीदास ने बाहर निकाल दिया था और अपने बड़े जो उनका उनकी हवेली थी उसके बाहर अपने भाई को एक झोपड़ा दे दिया रहने के लिए। अब रोज चंडीदास माता चंडी की पूजा किया करते और उनके बंगला, उनका जो भी वो हवेली थी, उस हवेली को लगकर बहुत बड़ा बागीचा। तो एक दिन इनके भाई, उन्होंने देखा कि बागीचे में बहुत सुंदर एक गुलाब का पुष्प उगा हुआ है, परंतु इनको अनुमति नहीं थी। ये चाहते थे कि भगवान शालिग्राम कोई ऑफर करें, तो इन्होंने मन में ऑफर किया। मन में गए, वो फूल तोड़ा मन में और लाकर मन में शालिग्राम को ऑफर किया। अब उसी समय जैसी ऑफरिंग यहां पर शालिग्राम को हो गया, मानसिक ऑफरिंग हो गया, चंडीदास आए और उन्होंने वही फूल तोड़ा और जाकर अपने आराध्य देवी चंडी उनको ऑफर किया। तो जब उनको ऑफर किया तो माता चंडी प्रकट हुई, उनके विग्रह से प्रकट हुई और ये आश्चर्यचकित हो गए कि इतने सालों से मैं इनकी आराधना कर रहा हूं, आज पहली दफा ये प्रकट कैसे हो। तब फिर माता चंडी ने कहा कि आज पहली दफा तुमने मुझे सही ऑफरिंग किया है, मेरे जो आराध्य देव विष्णु हैं उनका महाफूल वो ऑफर किया। तो जब माता चंडी ने सारी स्टोरी सुनाई तो उनको समझ में आया कि अरे भाई, मेरा भाई मानसिक रूप से फूल ऑफर किया और मैंने वो फूल माता चंडी को ऑफर किया, तो मेरे को इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो सोचो मैं डायरेक्टली अगर भगवान विष्णु की भक्ति पूजा करूंगा तो फिर कितना बेनिफिट मिलेगा। फिर आगे चलकर ये बहुत बड़े ये जो आपने सुना होगा ना, धनम देही पुत्रम देही जन्म देही, ये चंडीदास का रचा हुआ था पहले। ओरिजिनल कॉपीराइट किसका था? चंडीदास का, धनम देही पुत्रम देही। तो ये वो चंडी को इस प्रकार से प्रार्थना किया करते थे, लेकिन आगे चलकर फिर वो ऐसे महान भक्त बने, केवल विष्णु के नहीं राधा कृष्ण के, ब्रज भक्ति में, कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात स्वयं कृष्ण चंडीदास की कविताएं सुनते और गाते, और उन्होंने अपना नाम नहीं बदला जानबूझकर, उन्होंने अपना नाम वही रखा ताकि जो हम लोग आज डिस्कस करें तो ज्यादा इंपैक्ट आए। नहीं तो अपना नाम बदल सकते थे कृष्णदास, तो हमको क्या कृष्णदास ठीक, लेकिन चंडीदास और वो भगवान कृष्ण कैसे अनन्य भक्त बने, क्यों? क्योंकि सही मायने में उन्होंने ये जो भावयंतु आज की जो सेकंड लाइन है उसके अंदर, ये प्रसंग है महाभारत में जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और अग्र पूजा हुई किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। तो जब अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हुई तो वहां पर शिशुपाल इत्यादि वो सब चिल्लाने लगे, गालियां करने लगे, गाली गलौज करने लगे, और उस समय सहदेव जो कि ज्यादा ऐसे लाइमलाइट में कहीं आते नहीं थे, वो सहदेव आग बबूला हुए और सहदेव खड़े हुए, और सहदेव ने बहुत से जितने अन्य राजा थे उन राजाओं को कहा कि मैं अगर आगे आपने एक भी शब्द कुछ इसके विरोध में कहा, भगवान श्री कृष्ण के अग्र पूजा के विरोध में कहा, तो आपका सर और मेरा पैर कुचल डालूंगा आपके सर। ये लोग सब क्षत्रिय थे तो उस प्रकार की भाषाएं इनकी होती थी। तो भीष्म पितामह ने रोका, लेकिन जैसे ही, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे ही सहदेव, इन्होंने ये सब तो कहा इनको, और इन्होंने एक वाक्य कहा, आप लोग छोड़ दीजिए ये सारे, आप लोग जो राजा आए हैं आप लोग तो लिस्ट में गिनती में नहीं आते, यहां पर अगर बड़े बड़े देवता, देवराज इंद्र, ब्रह्मा, चंद्र, सूर्य, वरुण, ये सारे देवता वो भी अगर मौजूद होते तो उनको भी अनुमति नहीं होती अग्र पूजा स्वीकार करने की, केवल केवल भगवान श्री कृष्ण ही अग्र पूजा स्वीकार कर सकते। और जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा तो उस महल में सारे देवता प्रकट होकर पुष्प वर्षा करने लगे सहदेव के ऊपर। तो यदि कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते ना, अभी मैं हरे कृष्णा में आ गया, मैं वो जो माला पहले करता था वो करूं कि छोड़ूं, अभी हरे कृष्णा ही करूं, वो भी करूं, ये भी करूं, क्या करूं? तो ये स्टोरी में कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को हमारी पूजा का अग्रज बनाते हैं तो देवता क्या करेंगे? लोगों को डर क्या रहता है? लोग गुस्सा हो गए तो फिर उनसे खुन्नस नहीं लेने का। तो यहां इस स्टोरी के द्वारा ये समझ में आता है कि कितने प्रसन्न हुए ये देवता, और ये देवता तब तक वो फूल नहीं बरसाए, हाथ में लेके खड़े थे, फूल डाला नहीं। लेकिन जब सहदेव ने ये स्टेटमेंट बोला कि आप राजा तो छोड़ दो, आप तो गिनती में नहीं आते, लेकिन ये सारे देवता भी यदि यहां पे प्रकट होते तब भी भगवान श्री कृष्ण को ही ये अग्र पूजा हम देते, तब उन्होंने वो पुष्पों की वर्षा की। तो इसे समझ में आता है कि देवताओं की भावनाएं क्या हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करते हैं उनके प्रति। यहां पर समझ में आ रहा। अब कई बार कुछ देवता किसी सर्कमस्टेंस के वजह से थोड़ा अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं, तो उसका भी उदाहरण हम लेंगे, लेकिन उनको ठीक करने के लिए पर्सनली भगवान उनके केस को लेते हैं। इसे यहां पर श्री भगवान देवताओं का मान बढ़ाना भी जानते हैं तथा घटाना भी जानते हैं। तो भगवान ने जो इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स इनको दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हमारे सबके जीवन यापन के लिए, बहुत ही भगवान ने इनका मान बढ़ाया है, और इतना मान बढ़ाया है कि भगवान से ज्यादा इनके मंदिर आप देखोगे कितने सब जगह पर। अगर प्रोपोर्शन लगाएं तो भगवान कृष्ण और विष्णु के जो मंदिर हैं उनके कंपैरिजन में देवताओं के जो मंदिर हैं वो बहुत संख्या में। तो भगवान जानते हैं कि इनका मान कैसे बढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भगवान की नजर रहती है, एक भी इसमें से ये समझने लग जाए कि मैं और मेरा डिपार्टमेंट ये, तो भगवान तुरंत देखते हैं वायरस एंट्री कर रहा है यहाँ पे। तो भगवान का एंटीवायरस बहुत पावरफुल रहता है। तो इसके अगर हम कुछ उदाहरण लें तो सबसे पहले वही गोवर्धन लीला। ये प्रश्न हमारे आचार्य सामने प्रस्तुत करते हैं कि भगवान ने इंद्र यज्ञ को उसी वर्ष क्यों रोका? हर वर्ष चल रहा था ना इंद्र यज्ञ, तो भगवान कितने वर्ष के थे? 7 साल के थे। तो उसी समय भगवान ने इंद्र यज्ञ को क्यों रोका? क्योंकि उससे पहले देवराज इंद्र वो इस भावना में थे कि हाँ, ये ब्रजवासी गण अपने मेरे आराध्य देव भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे। परंतु जब देवराज इंद्र ने देखा कि ये तो क्या है, माखन चोरी करना और नटखट लीलाएं, बस ग्वाल सखाओं के साथ कुश्ती में हार जाना, ये सब, तो उनको लगा कि मैं ही स्वीकार कर लेता हूं, ये तो थोड़ा डाउट आ रहा है मेरे को इनके ऊपर। तब भगवान ने देखा, तो फिर जब भगवान उस साल देखा कि देवराज इंद्र के अहंकार का जो प्रपोर्शन है बहुत बढ़ गया है, तब फिर भगवान ने सोचा कि हाँ, ये साल मेरे को थोड़ा रिपेयर वर्क करना पड़ेगा यहाँ, तो दुरुस्ती का कार्य। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान ने जब देखा कि इंद्र का मान बहुत अभिमान बढ़ गया है, तो इसलिए गोवर्धन लीला भगवान ने रचाई। याज्ञिक ब्राह्मण एवं उनकी पत्नियां। अब ये जो याज्ञिक ब्राह्मण, इनके विषय में कहा गया है कि ये मथुरा के रहने वाले, ये लोग वृंदावन के नहीं थे, ये लोग मथुरा के रहने वाले थे, और ये लोग कंस के डर से देवताओं का ये यज्ञ कर रहे थे। कंस भी देवताओं को बहुत आदर सत्कार करता देता था। ये सब देखिए, ये हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, ये नहीं कि ये लोग नास्तिक लोग थे, ये लोग देवताओं को और भगवान के अस्तित्व को जानते थे। मतलब आजकल के जो नास्तिक हैं वो इनसे भी गए गुजरे। तो कंस के डर से ये मथुरा के ये जो ब्राह्मण, हालांकि चाहते थे कि ये विष्णु याग करें, परंतु फिर इन्होंने कंस के डर से देवताओं का यज्ञ प्रारंभ किया, और देवताओं का यज्ञ जो उन्होंने प्रारंभ किया, तो कृष्ण बलराम तो जान गए कि कंस के डर के वजह से ये देवताओं का यज्ञ शुरू किया, इसलिए जानबूझकर वो अपने ग्वाल सखाओं को उसी गांव में ले गए खेलने के लिए जहां पर वो यज्ञ कर रहे थे, और फिर उनको भूख लगी, ग्वाल सखाओं को भी भूख लगी, फिर हम सब कथा जानते हैं कि भगवान ने इनको भेजा। तो जब भगवान भेजे तो भगवान ने देख लिया कि ये लोग एक तो डर के मारे यज्ञ कर रहे हैं, जो कि ठीक ठीक भावना नहीं है। जैसे आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं ना कि भावना सही होनी चाहिए, यदि देवताओं का भी सत्कार कोई कर रहा है तो सही भावना में, परंतु ये लोग डर के मारे कर रहे हैं, कंस के डर के मारे कर रहे हैं, तो चलो इनका डर दूर करते हैं। लेकिन भगवान ने इनका डर किनके द्वारा दूर किया? उनकी पत्नियों के द्वारा दूर किया। तो भगवान ने यह दर्शाया कि देखो, आप लोग जो पति हो इनके, आप लोग से ज्यादा साहस आपके पत्नियों में, क्योंकि जब भगवान ने ग्वाल सखाओं को दोबारा भेजा कि जाओ और उनकी पत्नियों से मांगो, और एक्चुअली हमारे आचार्य कहते हैं कि जिस टाइम भगवान ने भेजा ग्वाल सखाओं को पत्नियों से मांगने के लिए, वो टाइम ये लोग सीक्रेटली भगवान विष्णु को ऑफर करना चाहते थे, जो भी कुछ उन्होंने अरेंजमेंट किया था, लेकिन मन में उनके था करें ना करें, कंस को पता लगेगा तो मार डालेगा, तो करना चाहते थे भगवान विष्णु को। हालांकि वो नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु के स्रोत ये यहां कृष्ण बलराम आए हुए। तो भगवान ने देखो एक तीर से कितने निशाने, भगवान ने भेजा कि भाई यही टाइम है तुमको ऑफर करना है, हमको करो यहां पर ऑफर। अब सोचिए कि कितना साहस चाहिए, कितनी हिम्मत उनके अंदर होनी चाहिए थी कि एक तो सीक्रेटली भगवान विष्णु को ऑफर करना चाहते थे लेकिन कंस के डर से नहीं कर रहे थे, और यहां पर ये ग्वाल सखा और कंस जिनसे इतना द्वेष करता था, ये ग्वाल सखाओं को हम सब कुछ ऑफर कर दें तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए भगवान इसके द्वारा ये प्रस्थापित कर रहे थे कि जब कोई किसी देवताओं को भी प्रसन्न करने जाता है तो उसमें जब तक कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता सम्मिलित नहीं करता वो यज्ञ उसका असफल रहेगा, लेकिन वो करने के लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, जैसे कि वो ब्राह्मणों की पत्नियों में वो थे। इसलिए वो तुरंत जितनी सारी सामग्री इकट्ठा की थी अपने पति के यज्ञ के लिए वो सब लेकर निकल पड़ी वो जहां कृष्ण बलराम खेल रहे थे, और उन्होंने सब ऑफर तो कर दिया कृष्ण बलराम और उनके सखाओं को। उसके बाद उनका प्रश्न था कि अभी हम लोग वापस जाएंगे तो हमको कौन स्वीकार करने वाला है, वहां पर तो बहुत बवाल मच गया होगा अभी तक। तो भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि तुमने अपनी भावना से सब कुछ मुझे अर्पित किया है, इसलिए जितने देवता जिनके लिए आपके पति यज्ञ कर रहे थे वो सारे देवता आपकी रक्षा करेंगे। Because you have selflessly offered everything to us, therefore those demigods who are supposed to receive all this, forget that they will be angry. In fact, they will be protecting you. Go back. This is my assurance. और वही हुआ कि उनके जो पति और बाकी रिश्तेदार सभी वो धिक्कार करने लगे खुद के ऊपर कि हमारे अंदर इतना साहस हिम्मत नहीं थी जितनी हमारी पत्नियों के अंदर हमने देखा। तो ये उदाहरण दूसरा, और ब्रह्म विमोहन लीला का प्रसिद्ध उदाहरण है जिसमें कि ब्रह्मा जी विमोहित हुए भगवान को जब उन्होंने देखा कि वो झूठा खा रहे हैं, अपने ग्वाल सखाओं का खाया हुआ खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी भी कुछ समय के लिए थोड़े भ्रमित हो गए कि ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा भी ये प्रदर्शित किया कि चाहे कोई इंद्र हो, देवराज इंद्र हो, या ब्रह्मा जी जो कि सेकेंडरी क्रिएटर हैं, यदि वो मेरे पद को समझेंगे नहीं तो मैं उनको भी ठीक करने के लिए तत्पर रहता हूं। तो अब ये प्रश्न है कि भगवान के जो निजी पार्षद हैं उनके विषय में क्या, मतलब आध्यात्मिक संसार में श्री भगवान एवं उनके भक्त इस सृष्टि के कार्यों से परे है। तो हम लोग जब इस सृष्टि में हैं जिसके अंदर ये सारे जो डिपार्टमेंट के हेड हैं जिनकी हमने लिस्ट देखा, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो इनसे ऊपर, वो इस ज्यूरिसडिक्शन में आते ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी बेसिक नेसेसिटीज को कौन प्रोवाइड कर रहा है? योगक्षेम वहाम्यहम् अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्य भयुक्तानां योगक्षेम वहाम्। पर्सनली भगवान, जैसे एक एक होता है ना गली का कुत्ता और एक होता है पालतू, तो दोनों में अंतर क्या है कि जो पालतू कुत्ता है वो यहां वहां इस घर से उस घर में मुंह मारता रहता है, कहीं पे कोई रोटी मिल जाएगी वो तो सब जगह पर मुंह मार मार के उसको दिन में कुछ एक हाथ रोटी मिल जाती है ना, कोई किसी ने फेंक दिया है इसे कुत्ते को तरस खा के उसको दे दिया कुछ, या कभी कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसे ही जीभ लपलपाते हुए सो जाता है। लेकिन जो पालतू कुत्ता होता है वो एकदम रात से अपना ठाट बाट में उधर अंदर बैठा है, मास्टर बना रहा है उसके लिए, कटोरा बना के लिए क्या खा बैठ खा। तो ये अंतर है, इसलिए प्रभुपाद क्या करते थे ना कि ये जब पूछा है कि ये जो कंठी माला आप पहनते हैं क्या मतलब है, तो प्रभुपाद ने कहा हम भगवान कृष्ण के पालतू कुत्ते हैं। सो पर्सनली ही प्रोवाइड्स। इसलिए जब हम ये समझेंगे कि भगवान पर्सनली देख रेख करते हैं अपने शुद्ध भक्तों की, या जो शुद्ध भक्ति में लगना चाहते हैं, तो उसमें ये समझना चाहिए कि फिर भगवान हमको वो देवताओं के ऑब्लिगेशन से ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर वो योग्यताएं होनी चाहिए। पालतू कुत्ता मतलब वो मालिक की वफादारी करे, अगर वो मालिक की वफादारी नहीं करता तो पट्टा निकाल के चल तू भी बाहर। तो उसके अंदर क्या गुण है, उसको मालिक कटोरा बना बना के क्यों खिला रहा है दिन में तीन बार, और खाली कटोरा बना बना के खिला भी नहीं रहा है, बाहर भी लेके जाता है उसको, जो भी खिलाया है उसको बाद में। और वेस्ट में तो एक कदम आगे वो जो विष्टा वो करता है उसको उठाना भी पड़ता है, उस मालिक को उठाए नहीं तो उसके ऊपर फाइन लगता है उसको। तो ये सब क्यों? क्योंकि कुत्ता इतना वफादार होता है उस मालिक का। अब इसमें हमको ये समझना है कि जो देवता है उनमें देने की क्षमता है परंतु सीमित है, उनको भगवान ने लाइसेंस दिया है लेकिन उनकी क्षमता सीमित है क्योंकि वो हम जैसे जीवी हैं। जैसे हम ये गीता कोर्स में एग्जांपल देते हैं कि एक प्लग पॉइंट है, तो यहां पर एक प्लग पॉइंट है तो यहां पर इसमें शक्ति है पावर देने की लेकिन सीमित है, इसमें आप हर प्रकार का अप्लायंस नहीं डाल सकते। तो वैसे ही सीमित इनकी शक्तियां होती, लेकिन जो पावर हाउस होता है वहां पर आप कितना भी बड़ा अप्लायंस लगा सकते हो। तो वैसे ही देवताओं में और भगवान में फिर ये अंतर एक और है। अब भगवान आज के श्लोक में आगे बहुत महत्वपूर्ण ये जो लाइन है वो कह रहे हैं कि परस्परम भावयन्तः, परस्परम भावयन्तः। और जो पिछली स्लाइड हमने देखी इसमें ये समझ में आता है क्योंकि देवतागण उनकी क्षमता सीमित है इसीलिए उन्हें भगवान पर निर्भर होना पड़ता है, और न केवल भगवान पर यहां तक कि मनुष्यों के ऊपर भी, और हमको तो खैर उनके ऊपर निर्भर होना ही पड़ता है। तो भगवान यहां पर यह बोल रहे हैं कि क्या भावना होनी चाहिए, यह भावना नहीं होनी चाहिए कि देवता इस भावना में रहे कि हम दे रहे हैं, और मनुष्यों में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि मैंने तप किया है तो देना ही पड़ेगा। ये दोनों एक्सट्रीम भावना है। परस्परम भगवान कह रहे हैं कि दोनों का सहयोग ये होना चाहिए। तो अब इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। महाभारत में ये कथा है कि अग्निदेव एक बार एक राजा हुए, उनका नाम था श्वेतकी। तो ये राजा श्वेतकी इन्होंने 12 वर्ष यज्ञ किया नॉन स्टॉप, और अग्निदेव यज्ञ में हवन में अग्निदेव को इतना घी अर्पित किया, 12 वर्ष नॉन स्टॉप घी अग्निदेव ने पिया। और हम बात कर रहे हैं पिछले युगों के, जहां पे शुद्ध घी मिलता था, ये मिलावटी नहीं। तो शुद्ध घी अग्निदेव 12 वर्ष तक पिए, उसके वजह से उनकी अग्नि मंदाग्नि हो गई, मंद हो गई, और उनकी कांति चली गई, एकदम सफेद हो गई, अग्नि सफेद हो गई पूरी। तो अग्नि परेशान कि अभी इतना घी मैंने पी लिया है, तो मेरे को अभी इसको रिकवर करने के लिए कुछ और खाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आपकी समस्या का हल एक ही है, कि एक ही वन है जहां पर ऐसी औषधियां हैं जिसके वजह से आपकी जो अग्नि मंद हो गई है ये पुनर्जागृत हो सकती, और वो है खांडव वन। और ये खांडव वन किसके अंडर था? ये पांडवों के अंडर। तो अग्निदेव ये अर्जुन के पास गए और अर्जुन को बोले, जब पांडवों ने टेक ओवर कर लिया उसके बाद में, तो अर्जुन को बोले कि देखो मैं 7 बार खांडव वन को खाने के लिए गया, लेकिन वहां पर तक्षक उस खांडव वन में रहता है, नाग, तक्षक नाग, तो तक्षक नाग ने मुझे खाने नहीं दिया। तो अर्जुन ने पूछा कैसे? क्योंकि तक्षक देवराज इंद्र का बहुत घनिष्ठ मित्र है। तो मैं अग्नि, अब अग्नि क्या जलाकर पूरे वन को खाने का उनका प्रयास था, मैं जब भी वहां 7 बार में गया, मैं जब भी वहां पर खांडव वन को खाने जाता, तक्षक अंदर समझ जाता उसको कि अग्नि खाने के लिए आए, तो तक्षक तुरंत इंद्रदेव को SMS कर देते, वर्षा करो। तो मैं जला ही नहीं पा रहा था क्योंकि इंद्र वर्षा कर देते। तो अभी कुछ करो, यहां पर मेरी हालत खस्ता हो रही। तो फिर अर्जुन ने कहा, देखो भाई मैं विद्या तो जानता हूं उस वर्षा को रोकने की, लेकिन यहां इस पृथ्वी पर ऐसा धनुष ही नहीं है जो मेरे भुजाओं को हैंडल कर सके। सोचिए, अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अग्निदेव से कहा कि मेरी भुजाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि उस विद्या को यदि मुझे ऑपरेशनल करना है तो उसके लिए मेरे को इक्विपमेंट्स नहीं है इस पृथ्वी पर, कोई धनुष टिकेगा नहीं। तो अग्निदेव ने कहा क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा धनुष चाहिए जो कि इतना शक्तिशाली हो, और एक ऐसा तर्कस, तर्कस जानते हैं, क्विवर, बाण जिसमें वो रखते हैं ना, धनुष योद्धा रखते हैं, भाता, तो भाता, तर्कस, अक्षय, मतलब जिसके अंदर बाण एक निकालो तो वापस भर जाए, कभी खत्म ना हो उसके अंदर बाण, अक्षय तर्कस, ऐसा। तो अग्निदेव कहे अरे बस इतना ही? तो अग्निदेव ने फिर अर्जुन को गांडीव धनुष ऑफर किया, और फिर वो अक्षय, दो अक्षय तर्कस ऑफर किए, और साथ में एक्स्ट्रा रथ होता ना दिवाली पे थोड़ा काम कराने के लिए डिपार्टमेंट्स में, है ना, थोड़ा मिठाइयों का डब्बा एक्स्ट्रा जाता है। तो अग्निदेव ने गांडीव धनुष और वो अक्षय तर्कस दो और रथ, तो ये सब जो महाभारत के युद्ध में, ये सब भगवान की योजना थी, भगवान चाहते थे कि अग्निदेव ये सब कर। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि परस्परम, कि अग्निदेव जो कि देवता है, उन्होंने अर्जुन को ये सब कुछ दिया, अर्जुन एक मानव, और फिर अर्जुन ने, जैसे ही अर्जुन ने फिर कहा अग्निदेव को कि चलो महाप्रसाद ये शुरू करो, तो अग्निदेव जब खाना शुरू किए खांडव वन को, और यहां पर तक्षक इंद्रदेव को सूचित करते हैं कि ये वापस आ गया है 8वीं बार, तो फिर इंद्र जैसे ही वर्षा वहां पर डालना शुरू करते हैं तो अर्जुन अपनी गांडीव और उस अक्षय तर्क से धनुष इतने तेजी से निकालते हैं कि पूरा ऊपर एक मॉनसून शेड बना देते हैं। मॉनसून शेड होता है ना, एक बूंद वर्षा की खांडव वन के ऊपर नहीं गिर पाई। तो ये कहते हैं इसको परस्परम भावयंतु, जो भगवान कह रहे हैं कि देवता और मनुष्यों में क्या परस्पर। फिर एक और उदाहरण श्रीमद् भागवत में आता है, यह है च्यवन मुनि और अश्विनी कुमार का। तो च्यवन मुनि ये बहुत बड़े मुनि, अब उस प्रांत के जो राजा, उनका नाम था राजा शर्याती। तो शर्याती वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि च्यवन मुनि का आशीर्वाद मिले उस यज्ञ के लिए। तो वो अपनी पुत्री, उनकी पुत्री का नाम था सुकन्या, तो राजा शर्याती अपनी पुत्री सुकन्या के साथ गए च्यवन मुनि के आश्रम में उनसे ब्लेसिंग्स लेने। तो जैसे वो वहां पहुंचे तो च्यवन मुनि कहीं दिख नहीं रहे थे, आश्रम तो है लेकिन च्यवन मुनि कहीं दिख नहीं रहे। तो वो वेट कर रहे हैं राजा शर्याती, उनको लगा कि कहीं वन में कहीं गए होंगे तपस्या करने, आ जाएंगे। तो वो वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और ये सुकन्या, ये मतलब एकदम जैसे युवती थी तो थोड़ा उसमें नटखटपना था, तो ये घूम रही थी आश्रम में, यहां वहां देख रही थी क्या होता है ये आश्रम इनका। फिर इसने देखा कि ऐसे चमकीले दो कुछ है ना चमक रहे हैं ऐसे, उसने लगा ये क्या चमक रहे हैं। तो उसने एक तिनखा लिया, नटखटपने में डाला, और वो च्यवन मुनि की आंखें थी। च्यवन मुनि धरती के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर वो एंटहिल वगैरह बन गया था, तो उनकी आंखें खाली दिख रही थी, वो आंखें बंद भी नहीं हो रही थी। तो ये सुकन्या, उसने वो तिनखा डाला, च्यवन मुनि एकदम क्रोधित हो गए। च्यवन मुनि बाहर आए तो इधर मुनि तपस्या कर रहे थे, ये उनकी आंखें थी, तो क्रोधित हो गए। अभी ये राजा बोले कि अभी कैसे, और च्यवन मुनि बहुत हजारों वर्ष से वहां बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो उनका शरीर वो पूरा धरती के नीचे बैठने के वजह से कवर्ड था, तो पूरा शरीर एकदम जैसे वृद्ध व्यक्ति का वैसा हो गया था। तो राजा शर्याती अब सोचे कि कैसे इनको प्रसन्न, तो राजा शर्याती ने कहा मैं मेरी बेटी देता हूं, उनसे विवाह कर लो। तो वो बहुत ही अति सुंदर सुकन्या थी वो, उनकी बेटी। तो च्यवन मुनि ने जब ये ऑफर सुना तो मर्क्यूरी नीचे गया, पारा नीचे हो गया, बोला ऑफर तो अच्छा है लेकिन इसमें तकलीफ ये है कि आपकी बेटी तो युवती है, इतनी सुंदर है, और मैं, मेरा हाल ये। तो फिर वो गए अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ये सब देवताओं के ये फिजिशियंस हैं, सब केमिस्ट शॉप वगैरह देवताओं का ये संभालते हैं अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार के पास गए और अश्विनी कुमार को कहा कि भाई देखो ऐसा ऐसा है कि हमारा डेट फिक्स हो गया है शादी का, कार्ड छपने वाले हैं अभी, तो थोड़ा मेकअप वेकअप कराओ हमको। तो अश्विनी कुमार उन्होंने कहा देखो भाई आप इतने शक्तिशाली च्यवन मुनि, बहुत वर्ल्ड फेमस च्यवन मुनि आप हो, आप पहले हमारी समस्या दूर करो। उनकी समस्या क्या थी कि उनको सोमरस पीना था लेकिन इंद्र ने सब रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था कि अश्विनी कुमार को सोमरस नहीं मिलेगा। तो अश्विनी कुमार को बहिष्कृत कर रखा था कि सोमरस आके नहीं पी सकते, और इनको सोमरस पीना था। तो इन्होंने कहा कि देखो आपके जो ससुर हैं, कौन है, महाराज शर्याती, तो महाराज शर्याती वो सोम यज्ञ कर सकते हैं, उनको वो लाइसेंस मिला हुआ है, वो सोम यज्ञ कर सकते हैं। तो वो सोम यज्ञ से तो जो सोम रस उत्पन्न होगा आप वो दहेज में मांग लेना, आप वो दहेज में मांग लेना और वो हमें दे देना और हम फिर बाकी संभाल लेंगे आपको, आपका पूरा मेकअप करके आपको उधर बिठाएंगे। तो ये अब परस्परम फिक्स हो गया। तो अब अश्विनी कुमार इन्होंने एक ऐसा सरोवर जिसके अंदर सारी औषधियां जड़ी बूटियां वो सब डाली हुई, ऐसे सरोवर में उनको कहा बस जाके आप इसमें गोता लगा के आइए। तो च्यवन मुनि जाके जैसे गोता लगा के आए, बाहर आए तो एकदम नव युवक के रूप में बाहर आए, सुंदर। और फिर उन्होंने अपने ससुर महाराज शर्याति को कहा कि ये सोम यज्ञ आप कीजिए, और सोम यज्ञ जब उन्होंने किया सोमरस उत्पन्न हुआ। तो अब सोमरस अश्विनी कुमार वो पीने ही वाले थे तो देवराज इंद्र को पता लग गया। अभी क्या उनके जासूस जब सब जगह होते हैं इंद्र के, तो देवराज इंद्र को पता लगा। देवराज इंद्र तुरंत आए वो वज्र लेकर, उनका जो पर्सनल वेपन है क्या है, वज्र, वज्र लेकर आए। तो जैसे ही वज्र लेकर आए अभी मारने के लिए, च्यवन मुनि इतनी तपस्या उन्होंने की थी, उनके पास इतनी शक्ति थी, तो उन्होंने देवराज इंद्र का हाथ फ्रीज कर दिया पूरा, उनका हाथ पूरा फ्रीज हो गया। तब फिर देवराज इंद्र सोचे कि भाई भाई ये च्यवन मुनि हैं इन्वॉल्व इसके अंदर, इनसे मैं पंगा नहीं लूंगा, और प्लस इनकी शादी सुकन्या से हो रही तो मेरे को डर भी नहीं अभी ज्यादा, अपने अप्सराएं सब है ना सेफ हैं। क्योंकि जनरली इंद्र को डर किससे रहता है जब कोई मुनि तपस्या करते हैं, कि मेरी तपस्या में मेरी किसी अप्सरा को नहीं ले लें ये लोग। बोले कि चलो इनकी तो शादी फिक्स हो गई, डेट भी फिक्स हो गया, हॉल भी फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, हाँ। तो इसलिए फिर वो ठीक है ठीक है, पी लो सोमरस पीना है ना, पी लो। तो यहाँ पर ये भागवत में एक स्टोरी है जिसके अंदर च्यवन मुनि जो कि एक मानव पृथ्वी लोक के, और अश्विनी कुमार जो कि देवताओं के लिस्ट में से, तो उनके अंदर ये परस्परम सहयोग ये बताया गया है। तो अब भगवान ये जो कहे हैं परस्परम भावयंतः और श्रेयः परम अवाप्स्यतः, तो ये जो लास्ट लाइन है इसका अर्थ क्या है? परम श्रेय कब प्राप्त होगा? भगवान के अनुसार कोऑपरेशन अमंगस्ट ह्यूमंस एंड डेमीगॉड्स अल्टीमेट फॉर्च्यून टू द एंटायर यूनिवर्स। तो यहां पर भगवान इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? न तो डेमीगॉड्स को दे रहे हैं, न ह्यूमंस को दे रहे हैं। इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है? कोऑपरेशन। कृष्णा इज फोकसिंग ऑन परस्परम भावयंतः। व्हेन वी कोऑपरेट दैट इज द मोस्ट प्लीजिंग यज्ञ फॉर विष्णु। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे मुद्दा भगवान लास्ट की लाइन में बता रहे हैं। तो कृष्णस क्रिएशन, इसकी चर्चा हम हमारे भागवतम क्लास में भी कर रहे हैं। कृष्णस क्रिएशन, He has designed his creation in such a way that everything is interconnected and interdependent. कोई भी नहीं कह सकता कि मैं देवताओं से connected नहीं हूं, या मैं भगवान के creation के इस aspect से connected नहीं हूं। नहीं, we are connected to every element, every entity of Krishna's creation. And we are dependent also simultaneously. And not just we are dependent, but also they are dependent on us. ये नहीं समझना चाहिए कि मैं dependent हूँ वो थोड़ी, मैं connected हूँ वो नहीं, नहीं, they are also connected as we are connected. जैसे कि हमने दो उदाहरण लिए, अर्जुन और अग्निदेव, और च्यवन मुनि और अश्विनी कुमार इनका। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल और कॉस्मिक लेवल पर देखें, तो भगवान ने देखिए ये सृष्टि बहुत ही बुद्धिमानी से बनाई है। अभी जैसे पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि कोई किसान है, उसको अगर कपड़े सिलाने हैं तो उसको आता नहीं कपड़े कैसे सिलने जी, तो जो टेलर है, दर्जी है, उसको वो अन्न देता और वो जो दर्जी है उसको कपड़े सिल कर देता। तो ये क्या था? इंटर डिपेंडेंस। अभी हम कहते हैं कि अभी मेरे पास पैसा है तो पैसे से तो मैं दर्जी के दर्जन दर्जी खरीद लूं, लेकिन फिर भी आपको वो पैसे कमाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो भगवान ये तो छोड़ दीजिए, तो कॉस्मिक लेवल पर तो इतना सब इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस चल रहा है। अगर हम इंडिविजुअल हमारा खुद शरीर लें, ये जो पूरा शरीर हमारा है इसके अंदर भगवान ने जो अलग अलग उपकरण कहेंगे, इतना सोफिस्टिकेटेड जो मशीनरी है हमारा शरीर, इसके अंदर इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस है। जैसे हम क्लास में इसकी चर्चा कर रहे थे, मानो कि हमारा हमारे शरीर के अंग सब अलाइव हो जाए, सारे अंग अलाइव हो जाए, तो उनके आपस में जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी जीभ है, दांत हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये सब अलाइव हो जाए, तो इनके अंदर एक जो हार्मनी कितनी जरूरी है। जैसे जीभ की हम चर्चा कर रहे थे संडे को, कि सुबह सुबह ये जीभ ने कुछ खा लिया, एकदम वो रेडी वाले के पास जाके एकदम तर्रे वाले मिसल पाव खाया सुबह सुबह, तो जीभ ने खाया वो, अंदर बिचारी वो आंतड़ियां वगैरह सब सो रही थी आराम से, अरे यार सुबह सुबह खा लिया, काम पे लगा दिया, उठो अभी सबको, किडनी को, लीवर को, सबको उठे, चलो अभी काम पे लगो, खा लिया सुबह सुबह। तो वो नीचे से वो, क्योंकि अभी यहां पर थोड़ा हार्मनी टूट रहा है, तो जीव ने तो अपने चटोरेपन के लिए खा लिया, तो ये नीचे अभी बिचारी आतड़ियां और लीवर किडनी ये सारी परेशान, ये नीचे से चिल्ला रही है, चटोरन कलमुई खाई खाती जाती है, अरे हमारे बारे में भी सोच। तो ऊपर से आंख बोलती है, आंख बोलती है कि हाँ अरे परसों इसने वो मिर्ची का पकौड़ा खा लिया, खाती ये है, रोना हमको पड़ता है। फिर वो दांत अंदर से वो 32 के 32 दांत बोलने लगे, हाँ अरे उस दिन रात को वो मुर्गा खाने लगी है, और वो सब हमारे दांतों में फंस गया, वो उसकी टांग, और सड़ रहा था रात भर, मंजन भी नहीं किया, और सुबह अगर मुंह खोलूं तो पूरी बिल्डिंग बेहोश हो जाए। तो ये दांत भी वो उसको कोस रही है, तो जीभ बोलती है काली जुबान है, चुप रहना काली जुबान है। अंदर मैं छोटी सी लगती हूं, मैंने अगर किसी को गाली गलौज कर दी ना, तेरी 32 की 32 ही बाहर कर देगा वो। तो अंदर वो पूरा अंदर झगड़ा चल रहा है। अचानक उसने डिसाइड किया कि आज 5-स्टार होटल में खाने जाना, तो पेट एकदम खुश हो गया, आज तो 5-स्टार होटल में खाने जाना, अरे वाह आज तो मजा आएगा। तो पेट टांगों को बोल रहा है जल्दी जल्दी चले, अरे उधर पार्टी खत्म हो जाएगी तो फिर से रेडी वाले के पास चला जाएगा। और नीचे फिर वो टांगे पेट को बोलती है, अबे पेटू खा के सिंटेक्स की टांकी हो गए, तो तेरा 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 जो पूरा लोड है वो हमको लेना पड़ता है, इतना फट रहा है, तो इतना फट रहा है, फट जाएगा, इतना खा रहा है, 5-स्टार होटल में जाना। तो ऊपर से वो आंखें भी बोलती है, टांगों को बोलती है आंखें कि सही सही बोल रहे हो टांगे भाई, सही बोल रहे हो, ये पेटू इतना खा लिया, पेट इतना बड़ा कर लिया इसने, पिछले एक साल से आप दोनों का दर्शन नहीं किया मैंने। तो यहां अब इधर पूरा जो इनका इंटरकनेक्शन है उसके अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। तो जी वो सबको चिल्ला के, भी रात का समय हो गया, मेरी काली जुबान बाहर मत निकालो, सब लोग चुपचाप सो जाओ, अभी हो गया आज का कार्यक्रम, सब लोग सो जाओ। तो सभी लोग सोने जाते हैं, फिर जो हृदय हार्ट वो बोलता है, मैं सो गया ना, सब सो जाओगे जिंदगी भर के लिए। तो वो अपना इंपॉर्टेंस बता रहा है। तो ऐसे अगर हम देखें हमारे शरीर में, चाहे वो एक जीभ हो जो दांतों के बीच में दिखती भी नहीं, चाहे दांत हो, चाहे पैर हो, चाहे हमारा हार्ट किडनी लिवर जो भी हो, ये सब के अंदर ये जो कनेक्शंस हैं वो हार्मोनियस अगर नहीं होगा तो फिर क्या होता है, बिगड़ जाता है तालमेल, फिर शरीर वो अस्वस्थ होता है। और वैसे ही इंटरडिपेंडेंस। तो अगर हम कनेक्शन के थ्री लेवल्स देखें तो सबसे पहला लेवल कनेक्टेड, कोई कहेगा, कोई कहेगा डिसकनेक्टेड, लेकिन भगवान का क्रिएशन क्या है, इंटरकनेक्टेड। तो इसमें थ्री लेवल्स इसलिए बताया गया है कि जब कोई कहता है कि हां मैं देवताओं से कनेक्टेड हूं, मैं समाज से कनेक्टेड हूं, या मेरे पड़ोसी से कनेक्टेड हूं, मेरे रिश्तेदारों से कनेक्टेड हूं, तो वहां पर केवल आपकी तरफ से जो कनेक्शन है वो मायने नहीं रखता, उनकी तरफ से कनेक्शन है कि नहीं। जैसे एक व्यक्ति बोला, मुझ में और बिल गेट्स में कोई अंतर नहीं। कैसे भाई, आप में बिल गेट्स में अंतर क्यों? हाँ, ही नेवर कॉल्स मी, आई नेवर कॉल हिम, ही नेवर विजिट्स माय हाउस, आई नेवर विजिट हिज हाउस। कॉमन है, सेम है हम लोग। तो अगर मैं बोलूं कि मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, क्वेश्चन है वो आपको जानते हैं कि नहीं। तो इसको कहते हैं इंटर कनेक्शन। किसी भी रिश्ते में इंटर कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमको केवल ये नहीं समझना कि मेरी तरफ से कनेक्शन है या मेरी तरफ से डिसकनेक्शन है। इंटरकनेक्शन ये हाईएस्ट लेवल भगवान के क्रिएशन में। और डिपेंडेंस के भी थ्री लेवल्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। तो हम कहते पहले तो हम अंग्रेजों पर डिपेंडेंट थे, अभी हम इंडिपेंडेंस मनाते हैं ना हर साल। तो पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पे राज करती थी, अभी कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज, कितनी संख्या मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे ऊपर, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। और फिर हम कहते हैं हमको इंडिपेंडेंट बनना, नहीं, वी कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट। प्रभुपाद ने कहा 4 जुलाई जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, प्रभुपाद ने कहा ऑन दिस डे वी डिक्लेयर अवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। तो कई लोग अगर इस कंसेप्ट में रहते हैं कि आई विल बी डिपेंडेंट ऑन गॉड, नो, मतलब डिपेंडेंट ऑन गॉड मतलब भगवान जो करना है वो ही करेंगे, हमारी डोर तो उनके हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, वो जो बुलाएंगे तो मंदिर आएंगे, वो बोलेंगे जब कराएंगे तो करेंगे। वी हैव टू बी इंटरडिपेंडेंट विद गॉड ऑल्सो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये वर्स क्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। इस वर्स में भगवान बता रहे हैं व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस, कि हम जितना अपनी तरफ से भगवान को अपने आप को अर्पित करते हैं, भगवान उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसलिए ये जो तीन लेवल्स कनेक्शन के और डिपेंडेंस के जानना बहुत जरूरी है कि इनका हाईएस्ट लेवल क्या है, इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस। तो आज के श्लोक का टेक होम मैसेज फिर से एक रिकैप, यज्ञ शैल प्लीज डेमिगॉड्स शैल प्लीज ह्यूमंस, दिस कोऑपरेशन शैल ब्रिंग यूनिवर्सल प्रॉस्पेरिटी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 3.12 अगले श्लोक में भगवान इसका उत्तर देंगे, चोर कौन है। तो यदि जानना है आपको कि चोर कौन है, तो अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह पर आप लोग आ जाइए। जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की।
हरे कृष्णा, कुछ सोचना इस प्रकार से है, आज के जो फीस प्रसारम स्पॉन्सरशिप है वो श्रीमान सोनू खान चंदानी जो दुबई से है उन्होंने किए हैं, उनकी जो माता है ज्योति खान चंदानी जी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो उनके परिवार को मैं निवेदन करता हूँ, कृपया आप 2 मिनट के लिए आ जाइए। खान चंदानी परिवार से कोई यहाँ पे है तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे आइए और इस भेंट को स्वीकार कीजिए। हम 3 बार हरि बोल का धन्यवाद देंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और इनके लिए और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आज की जो स्वीट प्रसादम है उसके स्पॉन्सरशिप है श्रीमान श्रीपाद भट्ट प्रभु, उनके पुत्र हार्दिक, इनका आज 8वां जन्मदिन है। तो मैं श्रीपाद प्रभु से निवेदन करता हूँ, केवल 2 मिनट के लिए प्रभु जी आप आगे आइए। श्रीपाद प्रभु के हार्दिक आइए, हार्दिक उनका पुत्र यहाँ पे आ रहा है। तो हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल तिकड़े। आज जो दूसरे स्वीट स्पॉन्सर है वो है मिस्टर रोहित रमणिक, इनका आज 17वां जन्मदिन है और उनका 12th एग्जाम में भी उनका अच्छा रिजल्ट आया है, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने प्रसाद स्पॉन्सर किया है। तो मैं रोहित से निवेदन करता हूँ केवल आप 2 मिनट के लिए आगे आइए और इस भेंट को स्वीकार कीजिए। रोहित रमणिक इनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और जो भी भक्त आज हमारे मंदिर में पहली बार आए यहाँ पे उनको हम निवेदन करते हैं केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए। जो भी भक्त आज हमारे सत्संग कार्यक्रम में पहली बार आए बहुत बहुत धन्यवाद, अब आपका कीमती समय निकाल के हमारे मंदिर में पधारे। हम यही प्रार्थना करते हैं श्री राधा मदन गोपाल जी, गौरीता, शिल प्रभुपा जी और सारे वैष्णव से कि आज की शाम आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत रहे और जो प्रभु आज इंटरडिपेंडेंसी बता रहे थे उसका भी अगर हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन सच्ची में अच्छे से प्रॉस्पर होगा। तो हम इनका धन्यवाद देंगे और स्वागत करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृपया अपने जगह पर बैठ जाइए। और जो भी भक्त मंदिर में नए नए आए हैं जो अभी अभी चालू किए उनके लिए सूचना, आने वाले 10 तारीख को हमारे मंदिर में जन्माष्टमी होगा और जन्माष्टमी के उत्सव के बाद 13 तारीख से हमारे मंदिर में भगवद गीता बेसिक कोर्स होने वाला है। तो वो 6 दिन का कोर्स होगा जो शाम को होगा ठीक 7 से लेकर 9:30 बजे तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो भी इस कोर्स को अटेंड करते हैं उनके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं स्ट्रेस हो या जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको ओवरकम करते हैं और उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो ये अंग्रेजी में कोर्स होने वाला है, तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अभी यहाँ पे कीर्तन होगा और बाद में सबके लिए बाहर प्रसाद की व्यवस्था होगी। तो प्रसाद लेने से पहले हमारी जो अतिथि सेवा की जो टीम है प्रभुपाद जी के मंदिर के यहाँ पे वो खड़ी रहेगी, तो उनसे आप मिल सकते हैं ताकि आपको इस्कॉन की सारी जानकारी और कोर्स की सारी जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा।